तो वो जितना पेट्रोल था वो अपनी अवधि में पूरा खाली हो गया, तो उस अपेक्षा से उसको सकाल मरण कहा जाता है। और उसकी परिभाषा भी यही है कि एक एक समय में एक एक आयु के निशय निशेक निर्जीर्ण होते चले जाए और अपनी पूर्ण अवधि में आयु पूर्ण हो जाए, वो यथाकाल मरण है। ठीक है ना, कहा ना गोमट सार में, तो वो वहां रेफरेंस की गाथा भी हो सकती है या मूल गाथा में, क्या मूल गाथा में हो सकता है, संगति बैठा लेंगे, क्योंकि वहां पर किसी अपेक्षा से ये लगा दो तो सम्यक हो जाता है, और अपेक्षा ना लगाओ, सिर्फ उसका एकांत पकड़ लो कि नहीं ऐसा ही है, तो गए काम से। वही बात देखो, कितनी विशेष जानकारी की बात, वही बात नए दृष्टि से लगा करके कहो तो वो बात सम्यक हो जाती है, और नयों को हटा दो तो मिथ्या हो जाती है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं खड़कता, अब ये सम्यक है कि मिथ्या? नए दृष्टि न लगाओ तो मिथ्या है, और नए विवक्षा लगाओ तो, वो याद है आपको जिनेन्द्र वर्णी जी ने किस अपेक्षा से घटित किया था, घुमा फिरा कर कैसे भी वो घटित तो हुआ था ना। तो अगर आप उसको अन्यथा मान लेते हैं और फिर एकांत पकड़ लेते हैं, तब वो चीज मिथ्या होती है। तो इस तरह आयु के क्षय से मरण होता है, और आयु देने में कोई सक्षम नहीं होता मरते हुए जीव को। देविंदो भी न रखे देखो भी, कोई देवों का इंद्र भी बचा नहीं सकता। तो और अयथाकाल मरण में क्या हो गया, अयथाकाल मरण में जितनी आयु बांध कर लाया था उसको उतनी अवधि में पूर्ण नहीं कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, ये ख्याल में रखना, पूर्ण तो कर रहा है, क्योंकि अपूर्ण आयु वाला मरता नहीं। जो आयु को पूर्ण नहीं करता वो शरीर छोड़ नहीं सकता, आयु पूर्ण होगी तब जाकर के शरीर से रवानगी होगी। अकाल सकाल का एक वो निर्जरा के लिए आता है, निर्जरा के लिए दृष्टांत देते ना, पकावे पाल विषय माली, आम है पेड़ पर पकेगा तो बहुत दिन लगेंगे, तोड़ लिया और फिर इसमें पका दिया तो फिर कुछ ही समय में पक जाता है। उसी प्रकार आयु अगर अपने समय से पूर्ण होगी तो फिर 70 साल लगेंगे, और 50 साल में एक्सीडेंट हो जाए तो 20 साल पहले ही पूरी होगी। ये पूरी होगी पर ध्यान देना, जैन दर्शन के अनुसार आयु पूर्ण होती है, और अन्य मतों के अनुसार वो 20 साल तक प्रेत आत्मा बन करके वहीं मंडराता है। किसी पुल पर एक्सीडेंट हो जाए तो रात के समय फिर डरावनी कथाएं बनती, फिल्में बनती, उपन्यास लिखे जाते हैं, और लोग घबराते हैं वहां जाने से। माँ भी बच्चों को डराती है, ज्यादा कड़बड़ करेगा तो फिर वहां वो पनिशमेंट के नाम से धमकाती है। तो वो सब मान्यता सैद्धांतिक दृष्टि से विपरीत है, वास्तविकता तो ये है कि दिए में जब तक तेल है तब तक जलता है, और अगर तेल बीच में आप निकाल लो तो पहले बुझ जाएगा। यही सिस्टम है, समझ लो दिया जल रहा है, अब दिया जल रहा है तो अपने हिसाब से जलेगा, तो कितने मिनट तक के जलेगा उसका एक हिसाब है, या इतने घंटों में ऊपर तेल जब तक पूरा होगा तब तक जलेगा, और बीच में अगर इस ऐसे चम्मच डाल करके तेल निकालो आप दूसरे दिए में, फिर बढ़िया सुंदर दृष्टांत। तो अब वो दिया कितने जल्दी बुझेगा, बुझ जाएगा, लेकिन बुझने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं है, राख, वो जो बाती होती है उसकी राख बचेगी वहां। यद्यपि वो जो वैराग्य वाला दृष्टांत था उसमें तेल भरे हुए दिए भी बुझ जाते हैं, पर अभी जो दृष्टांत दे रहे हैं वो एक दूसरे प्रकार का, चम्मच से निकाल लिया उसमें से घी या तेल। तो उसी प्रकार ये है कि एक्सीडेंट द्वारा अपनी आयु असमय में निकाल ली जाती है, वो सारे जो निषेक है 20 साल के जो निषेक हैं वो अंतर मुहूर्त में एक साथ झड़ जाते हैं। एक दृष्टांत और देते हैं हमारे गुरुजी, घड़ा है उसमें पानी भरा है, एक एक ग्लास पानी निकालो कुछ समय लग जाएगा उसको खाली होने में, और अगर कोई पत्थर मार दे शरारती लड़का, घड़ा फूट जाता है, लेकिन घड़ा फूट जाता है तो क्या उसके टुकड़े अलग अलग बिखर जाते हैं और पानी जितना बचा था उतना वहां हवा में लटकता रहता है? आ रहा है समझ में आपको? नहीं। तो जिस प्रकार वो पानी हवा में नहीं लटका रहता, उसी प्रकार एक्सीडेंट से मरी हुई आत्मा वहां पर पुल के पास नहीं मंडराती। वो अपने भावी आयु बंध के अनुसार अपनी आगामी गति में चली जाती उसी क्षण, और आयु उसकी पूरी वहीं की वहीं झड़ जाती। वो पानी कैसे रुक सकता है हवा में? घड़ा फूट जाए तो पानी तो निश्चित रूप से बिखर जाता है। इसी प्रकार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और ऐसा निमित्त मिल जाता है, जहर खा ले कोई, फंदा लगा ले, सांस रोक ले, पानी में डूब जाए, ऐसे कई कारण है, अटैक आ जाए, ये भी एक है आज का लेटेस्ट। ये बात अलग है कि अगर किसी ने व्यंतर आयु का बंद कर लिया हो देवायु में, तो फिर वो वहीं पर व्यंतर आयु में आकर के फिर ख्याल करे कि मेरा एक्सीडेंट किसने ठोकर मारी थी, अब देखो ठिकाने लगाऊं मैं किसी। बदले की भावना से अगर कोई प्रेतात्मा बनकर वहां आ जाए पुल पर, वो एक अलग अपेक्षा है उसकी, मतलब व्यवस्था अलग है। वो ऐसा नहीं है कि यहां पर इसकी आयु इतने साल बची थी तो इतने साल वहां रहे, ये बात नहीं है। इतना है तो आयु देने में कोई समर्थ नहीं होता, इसलिए मरते हुए प्राणी की रक्षा देवों के इंद्र भी नहीं कर सकते। पिछले गुरुवार से अपन ने जो स्वाध्याय किया है, बल्कि बुधवार से, आज सातवां दिन है, अनित्यानुप्रेक्षा में अपन ने पढ़ा था कि जो कुछ उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है, क्योंकि पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं, हमेशा टिकने वाला नहीं है। जन्म को मरण घेरे हुए है, जवानी को बुढ़ापे ने घेर रखा है, लक्ष्मी को विनाश ने घेर रखा है, इस तरह सब कुछ क्षणभंगुर है। सारे परिजन और स्वजन, सारे पुत्र पत्नी, अच्छे खासे मित्र, लावण्य, घर, गोधन आदि सारे के सारे, नवघण विंदेण सारिच्छम, नए बादलों के वृंद अर्थात समूह के समान नश्वर है। और इंद्रधनुष, मेघ धनुष अथवा बिजली के समान चंचल इंद्रियों के सुख हैं, अच्छे खासे नौकरों के वर्ग हैं, समूह हैं, और हाथी घोड़े रथ आदि जितने भी सुंदर सुंदर पदार्थ हैं वो देखते देखते नष्ट हो जाते हैं। वैश्रवण राजा को जो वैराग्य हुआ था, मल्लिनाथ भगवान का पूर्व भव, आपको पता हो कि वो वन विहार के लिए निकले और फिर एक वटवृक्ष की शोभा देखते हुए आगे बढ़ गए। वटवृक्ष यानी जो वड़लो होता है, बड़ का पेड़। और जब लौटने लगे तो उतनी देर में कुछ बादल बिजली की स्थिति बन गई, एक वज्रपात हो गया यानी बिजली गिरी और वो पूरा वृक्ष भस्म हो गया। और जब इन्होंने देखा कि इतना सुंदर वृक्ष की जिसकी शोभा को देखते देखते मैं इतना हर्षित हो रहा था कि कोई, मुझे लग रहा था कि आज ऐसी चीज देखी है मैंने कि कभी देखी नहीं थी पहले, और क्षण मात्र में सब कुछ नष्ट हो गया। जब इतना सुंदर वृक्ष और बरसों से खड़ा हुआ वृक्ष एक क्षण में बिजली गिरने पर नष्ट हो सकता है, तो मेरा ये वैभव कब तक स्थिर रहेगा? ये शरीर भी नश्वर है, ये संबंध भी नश्वर है, और जितने बंधुजनों के भाव हैं, आज अच्छे भाव कर रहे हैं, कल का क्या ठिकाना? इस संसार में मित्र शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है,
सब कुछ क्षणिक है। इस संसार के मुंह में पड़कर अपना अकल्याण करना अविवेक होगा। और ऐसा विचार कर उन्होंने अपना राज पुत्र को सौंप दिया। दीक्षा धारण करके 11 अंगों का अध्ययन किया, 16 कारण भावनाएं भाई, और कठोर तपश्चर्या करके अपराजित विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त किया। और वहां से आकर इसी भरत क्षेत्र में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान बने। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान। जैसे रास्ते में मुसाफिर मिलते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं, वैसा ही ये जितना संयोग है अपना क्षणिक है। बंधुजनों का, रिश्तेदारों का जो समागम है वो मुसाफिरी के जैसा ही है। ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे लोग मिलते हैं, साथ में बैठकर चाय नाश्ता कर लेते हैं, कुछ चर्चाएं भी करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कभी एड्रेस और फ़ोन नंबर्स भी लिख लेते हैं, और सब कुछ होता है। लेकिन अपने अपने स्टेशंस पर सारे मुसाफिर उतर जाते हैं, कोई किसी का साथी नहीं बनता, क्षणिक है। फिर कहते हैं कि खूब लालन पालन कर लो शरीर का, एक से एक सामग्री इसकी सेवा में लगा दो, इसको स्नान कराओ, इस पर सुगंध का लेप चढ़ा दो, और अनेक प्रकार के खाने योग्य पदार्थ इसको खिला दो। लेकिन जिस प्रकार पानी से भरा हुआ कच्चा घड़ा उस पानी में गल करके बिखर जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी 70, 80, 90 कितने भी वर्षों तक आपके द्वारा पुष्ट किया गया हो, लेकिन इसको भस्म होते देर नहीं लगती। अथवा जमीन में जो लोग गाड़ देते हैं उनका शरीर भी जमीन में कब तक रहता है? विलीन हो जाता है। और ये तो शरीर और संयोगों की बात हो गई। अब अगर लक्ष्मी के बारे में विचार करो तो ये धन संपत्ति जिसमें मोहित होकर संसारी जीव अपना हित भूल जाता है। बचपन में कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ता है, सीखता है, और फिर बाद में मन में ये भी विचार करता है, दूसरों को देख करके सोचता है कि देखो ये लोग कितना गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जब खुद बड़ा होता है तब वो भी वही करने लग जाता है। बचपन में सिगरेट के धुएं से उसको नफरत होती है, और बड़े होकर उसके मुंह से निकलने वाले सिगरेट के धुएं से दूसरे बच्चों को नफरत होती है। कैसी विचित्रता है संसार में। तो लक्ष्मी, धन संपत्ति शाश्वत नहीं है। इसका रंग जिस पर चढ़ जाता है वो पहले जैसा इंसान नहीं रह जाता, उसके अंदर कुछ अलग भावनाएं आ जाती है। जैसे शराब का नशा चढ़ता है वैसी दौलत का भी नशा होता है। आचार्य कहते हैं कि चक्रवर्तियों जैसे पुण्यशाली जीवों की लक्ष्मी भी जब नष्ट हो जाती है तब फिर जिन्होंने उतना पुण्य नहीं किया अथवा पुण्य ही नहीं किया उनकी लक्ष्मी कब तक साथ देगी। फिर आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी को किसी से प्रेम नहीं होता, चाहे वह कुलीन मनुष्य हो, धीरवीर हो, पंडित हो, योद्धा हो, पूज्य हो, धर्म में स्थित हो, अच्छे आचरण वाला हो और सज्जन हो, या फिर महासत्व हो, बाहुबली, भरत, श्री कृष्ण आदि जैसा महान पराक्रमी भी क्यों न हो, लक्ष्मी को किसी से प्रेम नहीं होता। लक्ष्मी सिर्फ पुण्य के पीछे चलती है। पुण्य नष्ट हुआ तो क्षण मात्र में लक्ष्मी गायब, करोड़पति से रोडपति हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि ता भुज्जि ज्यौ लच्छि, तब तक लक्ष्मी का उपभोग कर लो। दिज्जौ दाणी दया पहाणी, करुणा पूर्वक दान भी दे लो, जब तक पानी की तरंग के समान चंचली है लक्ष्मी, दो तीन दिन तक तुम्हारे साथ है, दो तीन दिनाई चिट्ठी हो, दो तीन दिन तक अपने साथ लक्ष्मी है, तब तक जो करना हो कर लो, क्योंकि पानी की तरंग के समान चंचल है, तरंग अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद कहीं से कहीं पहुंच जाती है, स्थाई नहीं। और जो मनुष्य लक्ष्मी का संचय तो करता है लेकिन उपभोग नहीं करता, नहीं पात्रों में दान करता है, वह अपने आप को छलता है और उसकी मनुष्य पर्याय व्यर्थ होती है। जो लक्ष्मी का संग्रह करके धरती के नीचे उसको बहुत गहराई में गाड़ कर रखता है, वो अपनी लक्ष्मी को पत्थर के समान बना देता है, क्योंकि जमीन के नीचे पत्थर भी गड़े होते हैं, वो पत्थर किसी काम के नहीं होते, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी किसी काम की नहीं रह जाती। और जो निरंतर लक्ष्मी का संचय करके दान भी नहीं करता और उपभोग भी नहीं करता, वह अपनी लक्ष्मी को भी दूसरों की लक्ष्मी के समान बना देता है। जिस प्रकार दूसरों की संपत्ति का अपन उपभोग नहीं कर सकते, उसी प्रकार अपनी लक्ष्मी का जो उपभोग नहीं करता और दान भी नहीं करता, उसकी लक्ष्मी दूसरों की लक्ष्मी जैसी होगी। फिर कहते हैं कि जो लक्ष्मी में आसक्त है और अपने आप को बड़ी कठिनाई से धारण करता है, माने धन कमाने में खून पसीना एक करके संचय 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 करता चला जाता है, वह राजा और रिश्तेदारों के काम आता है। मैंने खुद अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाता, वो सारी लक्ष्मी इकट्ठा करके फिर एक दिन मर जाएगा, मर जाएगा तब क्या होगा, वो लक्ष्मी किसके पास जाएगी। अस्वामिकस्य वित्तस्य दायादो मेदनी पति है, नीति है कि जिस धन का कोई स्वामी नहीं होता उसका मालिक राजा होता है, तो या तो राजा के पास चले जाएगा वो सारा धन, या फिर उसके रिश्तेदार हड़प लेंगे, होता अक्सर होता है ऐसा, तो हर समाज में होता है, चिंता मत करना। जो लक्ष्मी की वृद्धि करता है अनेक प्रकार की चतुराई से लेकिन तृप्त नहीं होता, सब प्रकार के आरंभ करता है, असी मसी कृषि वाणिज्य सब कुछ कर लेता है और रात दिन लक्ष्मी की ही चिंता करता रहता है, भोजन भी समय पर नहीं करता और रात को चिंता के कारण ढंग से सो भी नहीं पाता, वह लक्ष्मी का दास बन जाता है, लक्ष्मी का स्वामी नहीं रह सकता, क्योंकि दास ही तो ये काम करता है, सेवा करना किसका काम है, स्वामी का कि दास का। जो बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्यों में लगाता है वह पंडितों के द्वारा प्रशंसनीय बन जाता है और उसकी लक्ष्मी सार्थक होती है। इसी तरह जो इन बातों को समझकर ऐसे धार्मिक जन जो संकटग्रस्त हैं, जिनके पास कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है या जो परेशान है किसी कारण से, उनको बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दान देता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि जिसको जरूरत थी उसको उसने सहयोग दिया। कबूतर को दाने डालो और अपना भाई भूखा मरता हो तो ये तो दान का अपमान है, पानी के बबूले के समान धन और यौवन और साक्षात अपना जीवन भी क्षणभंगुर है। और इस बात को देखते हुए कि ये सब पानी के बबूले के समान नष्ट होने वाले हैं, जो ऐसा समझता है कि नहीं, मेरा जीवन तो अभी लंबा है, अभी तो मुझे और कई बसंत देखने हैं, वह मूढ़ आत्मा मोह ग्रसित है। और ये समझ लेना चाहिए कि उसका मोह बहुत बलवान है। फिर आगे 22वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि महामोह को छोड़ दो और सारे इंद्रिय सुखों को नश्वर समझ लो और मन को विषयों से दूर हटा दो, जिससे उत्तम सुख की तुम्हें प्राप्ति हो जाए। इसके बाद अशरण अनुप्रेक्षा में जो गाथाएं थी उसका अपन ने स्वाध्याय किया था कि उस संसार में कौन रक्षक हो सकता है जहां देवों के इंद्र का भी मरण दिखाई देता है, देवों के इंद्र को भी मरना पड़ता है एक दिन, तो वहां और कौन बच सकता है। हरि हर ब्रह्मा आदि सब समय के असीम प्रवाह में विलीन हो गए, यानी काल कवलित हो गए, कोई भी इस धरती पर अविनाशी होकर के नहीं रहा, सबका समय पूरा हो गया और सब चले गए। बड़े बड़े 12 चक्रवर्तियों के नाम भी आज यहां जितने लोग बैठे हैं सभा में सब नहीं जानते होंगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, स्वाध्याय करने वाले लोग भी 12 चक्रवर्तियों के नाम सबके सब नहीं जानते। पहले चक्रवर्ती का नाम सब जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो न जानता हो। पहले चक्रवर्ती का नाम है भरत, दूसरे सगर चक्रवर्ती, तीसरे मघवा, कहीं पर तीसरे चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती हैं, फिर मघवा चक्रवर्ती, फिर पांचवे चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान जी। तो ठीक है, रोज हैबिट में है इसलिए पता है। छठे चक्रवर्ती कुंथुनाथ भगवान, सातवें अरनाथ भगवान, आठवें शुभम चक्रवर्ती, नौवें चक्रवर्ती महापद्म, जिनके पुत्र विष्णु कुमार मुनि की कथा अभी आप सुनेंगे रक्षाबंधन के दिन, और दसवें चक्रवर्ती हरिशेण, ग्यारहवें जयसेन और बारहवें ब्रह्मदत्त, उनकी कथा सुन चुके हैं आपके, उन्होंने धन्य कुमार मुनि के शरीर पर पूरे बाण चला दिए थे और वो धन्य कुमार मुनि 9 महीने तक लगातार आहार में अंतराय को प्राप्त हो रहे थे। तो ऐसे 12 चक्रवर्तियों के नाम, अब देखो भरत चक्रवर्ती कितने दूर थे अपने से काल की अपेक्षा, और ब्रह्मदत्त कितने पास थे, आखिरी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त थे, पार्श्वनाथ भगवान के पहले हुए थे, तो भी चक्रवर्तियों के नाम गायब हो गए, लोग भूल गए, तो किसका नाम स्थिर रह सकता है। माने समय के प्रवाह में सब कुछ विलीन हो जाता है, कोई टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी नाम का मोह शरीर के मोह से भी प्रबल होता है। नाम का मोह शरीर के मोह से भी प्रबल होता है। व्यक्ति भूखा प्यासा रहना तो सहन कर लेगा, लेकिन मान सम्मान में जो ठेस लगती है वो सहन नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी ने प्रवचन सार पढ़ाते समय सन 84 में बतलाया था कि मांसोपवासी व्यक्ति की प्रशंसा हो जाए तो उसका चेहरा मिठाई खाए हुए व्यक्ति जैसा लगता है, और मिठाई खाने वाले व्यक्ति की निंदा हो जाए तो उसका चेहरा मांसोपवासी जैसा लगता है। यानी शरीर से ज्यादा मोह मनुष्य को अपने नाम के प्रति होता है। पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े चक्रवर्तियों का भी नाम जब रहा नहीं यहां, भरत चक्रवर्ती आदि पुराण में भी कितना अजीब दृष्टांत है कि भरत चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय की 60,000 साल लग गए, 8वें चक्रवर्ती की उम्र 60,000 वर्ष थी और भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय 60,000 वर्ष तक किया, 6 खंडों को जीता, 32,000 मुकुटबद्ध राजा को अपने वशीभूत किया और हजारों लाखों की संपत्ति, यानी लाखों तो हाथी थे, कितने घोड़े थे, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े, मतलब वो पूरे उसमें रहता है, 6 खंडों में इतना वैभव रहता है चक्रवर्ती का। आप सोचेंगे कि भाई 18 करोड़ घोड़े मतलब अयोध्या में थोड़ी आ सकते हैं, अयोध्या नगरी में 18 करोड़ घोड़े रह सकते हैं क्या एक साथ? नहीं रह सकते। तो वो 18 करोड़ घोड़े पूरे साम्राज्य में चक्रवर्ती के नाम से होते हैं। जब भी चक्रवर्ती बोलता है कि नेपाल देश का घोड़ा ले आना, तो फिर वो घोड़ा ला करके फिर उस पर वो सवारी करते हैं। कभी बोलते हैं कि सिंध देश का ले आना, तो सिंध देश का आ जाता है। वो जो स्टैलियंस होते हैं बड़े बड़े, जो युद्ध के घोड़े होते हैं, वो अलग जाति के होते हैं। अब यहाँ कभी मिल जाते हैं अपने को घास चरते हुए घोड़े, उसमें कोई दम नहीं है। चक्रवर्ती के घोड़े अलग होते हैं और इसके अलग होते हैं। और फिर उन घोड़ों में क्या होता है कि ऐसे पीठ के ऊपर हाथ रख दो आप, तो वो हाथ वहाँ रहेगा नहीं। जैसे किसी जानवर की पीठ पर ऐसे हाथ रखा आपने, तो वो हाथ टिक जाता है। लेकिन जो स्पेशल घोड़े होते हैं, उनके पीठ से हाथ एकदम फिसल करके झटके से नीचे आता है, टिकता नहीं उसके ऊपर हाथ। इतने उसके चर्म में एक ऐसा स्पर्श होता है विशेष, एकदम नीचे आ जाता है, स्निग्ध स्पर्श होता है। तो चक्रवर्ती जिनका इतना अपार वैभव था, सारा 6 खंड जिनको जानता था उस समय, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, पीढ़ियां बीत गई, तो फिर चर्चाएं रह जाती थोड़े समय तक के कि भाई ऐसे ऐसे कोई थे चक्रवर्ती। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग नाम भी भूलने लग जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं? विचार करने की बात है। परदादा और परदादा से भी पहले उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, चलो 7th नंबर का नाम कौन कौन जानता है? तो क्या बचा फिर? लेकिन फिर भी नाम के मुंह में पागल होकर के मनुष्य कितनी कषाय कर लेता है जीवन, कितनी कषाय, होता कुछ नहीं है। मान लो 20-50 हजार लोगों में आपका नाम विख्यात हो गया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया बताओ? जिनका नाम 6 खंडों में विख्यात था, उनका नाम भी भूल गए, तो फिर 20-50 हजार लोगों में अगर अपना नाम हो गया, तो कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई? क्या यही था मनुष्य पर्याय का फल? मनुष्य बनने की सार्थकता क्या आपने इसी में समझ ली कि मेरा नाम लोगों ने जान लिया, अखबार गुजरात समाचार में आ गया मेरा नाम, वाह धन्य हो गया मैं तो, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ? कितनी नादानी है। मैंने जिसने जैनत्व को नहीं समझा, जिसने कभी स्वाध्याय नहीं किया, जिसने कभी गुरुओं का उपदेश नहीं सुना, वो अगर ऐसा मोही हो तो एक अलग बात है। लेकिन जो जानते हैं, खुद अपने अपनी आत्मा से पूछो, 63 शाला का पुरुषों के नाम आते हैं क्या? उनसे बड़े हैं क्या अपन? 63 शाला का पुरुषों के नाम जब अपने को खुद नहीं आते, तो अपने नाम किसको आने वाले हैं आगे? सबको काल ग्रस लेता है, किसी को छोड़ता नहीं। फिर हरि हर ब्रह्मा आदि सब काल कवलित हो गए, तो अपन कहां बचने वाले हैं? कोई नहीं बचता। फिर दृष्टांत दिया कि जैसे शेर के पंजे में आए हुए हिरण को मौत से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार जब यमराज किसी को पकड़ लेता है, तो यमराज के फंदे से भी मरते हुए प्राणी को कोई नहीं बचा सकता। फिर दृष्टांत दिया कि अगर कोई बचा सकता, जैसे मान लो किसी की धारणा हो कि नहीं नहीं कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो होगा। ज्ञानाणु ग्रंथ में भी 12 अनुप्रेक्षाओं का बहुत सुंदर चित्रण है। ये जो विभिन्न ग्रंथों में 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, सबको अलग अलग पढ़ना चाहिए। अभी तो अपन कार्तिकीय अनुप्रेक्षा देख रहे हैं, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी बारस अणुवेक्खा नाम का ग्रंथ लिखा, उसको भी देखना चाहिए। ज्ञानाणों की भी 12 अनुप्रेक्षाएं देखनी चाहिए, और क्षत्र चूड़ामणि है, और अन्य भी ग्रंथ है। सर्वार्थ सिद्धि में भी 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, यशस तिलक चंपू में भी है। इन सबको अपन देखेंगे तो पता चलेगा कि देखो कितने प्रकार से अनित्यता का चिंतन किया जा सकता है। ज्ञानाणों का आपको स्मरण हो, अनित्यता का चिंतन उन्होंने कैसे किया? यस्य राज्याभिषेक श्री प्रत्युषेत्र विलोक्यते तस्मिन् नहनितस्यैव चिता धूमश्च दृश्यते। जिसके राज्याभिषेक की शोभा सूर्य किरणों के समय